समूहों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स टाइप्स। समाज में पाए जाने वाले अगणित समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है, फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया गया है। नंबर वन, सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे भी हो सकते हैं तथा बड़े भी। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे यह सदस्यों की संख्या पर ही निर्भर करता है। जॉर्ज सिमेल जॉनसन हुमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। इन विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है, फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। नंबर दो, स्थायित्व के आधार पर समूहों को अस्थायी एवं अस्थायी समूहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवार, नातेदारी समूह तथा शिक्षण संस्था आदि स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह जो बहुत ही कम समय के लिए समूह रूप में बने रहते हैं। कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होते ही वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। हम की भावना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण समनर के द्वारा 1907 में फॉकवेज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। आपने इस आधार पर दो प्रकार के समूह बताए हैं, नंबर एक अंतः समूह इन ग्रुप, नंबर दो बाह्य समूह आउट ग्रुप। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को हम वे समूह के नाम से भी जानते हैं। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। एक अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंतः समूहों के सदस्यों में एकता दिखलाई पड़ती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को हीन मानते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य अपने व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं जो एक अंतः समूह में होती हैं। अतः अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे से विपरीत विशेषताओं वाले समूह नहीं होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूहों का कोई निश्चित विशिष्ट आकार नहीं होता है। एक अंतः समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना विस्तृत भी हो सकता है। एक अंतः समूह वे सब लोग आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अर्थात जिन्हें हम अपना सकते हैं। हमारा परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश आदि हमारे लिए अंतः समूह हैं जिन्हें हम अपना नहीं समझते, वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतः समूह के सदस्य एक दूसरे से साधारणतः सहयोगी या मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता, भय तथा संदेह तक की भावना पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों एवं राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावनाएं दिखलाई पड़ती हैं। आगबर्न तथा निमकॉफ का विचार है कि हम में अपने अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हम व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में रोबैक लिखते हैं कि बाह्य समूह के सदस्यों को सदैव विशेष प्रकार से तथा सामान्यतः अपमानजनक रूप से संबोधित किया जाता है। रॉबर्ट वीरस्टीड ने इन समूहों के बारे में लिखा है कि अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें बना लेता है। इन समूहों के संबंध में वीरस्टीड ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रथम, अंतः समूह बाह्य समूह को दकियानूस और पिछड़ा हुआ समझता है। हमें अपने समूह सदस्यों में अनेक अंतर दिखलाई पड़ते हैं, परंतु वह समूह के सभी सदस्यों को हम समान बनाकर चलते हैं। अतः समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि वह समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में समानता पाई जाती है। द्वितीय, वह समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से अंतः समूह में एकता एवं सुदृढ़ता बढ़ती है। जब कभी किसी वह समूह से खतरे का डर होता है तो अंतः समूह में एकता सुदृढ़ हो जाती है।